आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति का श्रवण कर रहे हैं। आज अष्टमो अध्याय का वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते हैं कि व्यवहार इत्यादियों का निर्णय कैसा होना चाहिए। पहले श्लोक में व्यवहारों अर्थात मुकदमों के निर्णय के लिए राजा का न्याय सभा में प्रवेश, इसके बारे में महर्षि मनु कहते हैं। व्यवहारान् दृक्षोस्तु ब्राह्मणैः पार्थिवः मंत्रगैर मंत्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत् सभाम्। व्यवहारान्, व्यवहारों और मुकदमों को देखने अर्थात निर्णय करने का इच्छुक राजा न्यायगाता विद्वानों के साथ, सलाहकारों के साथ, मंत्रियों के साथ विनीत भाव एवं वेश से राजसभा में प्रवेश करे। दूसरे श्लोक में कहते हैं, तत्राशीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् विनीतवेशाभरणः पश्येत् कार्याणि कार्यकाणाम्। वहां न्यायालय में विनीत वेशभूषा आभूषणों से युक्त होकर सुविधा अनुसार बैठकर दाहिने हाथ को उठाकर मुकदमे वालों के कार्यों विवादों को देखे और निर्णय करे। तीसरे श्लोक में 18 प्रकार के मुकदमे बताए गए हैं। प्रत्यहम देश दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः अष्टादशु मार्गेषु निबद्धानि पृथक पृथक। सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्त्र व्यवहार के हेतु से निम्नलिखित 18 विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें। चौथे श्लोक में 18 प्रकार के मुकदमों का वर्णन करते हैं। तेषामाद्यमृणादानम् निक्षेपा स्वामी विक्रय संभूय च समुत्थानम् दत्तस्यानपकर्म च वेतनस्यैव चादानम् संविदस्य व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयो सीमा विवाद धर्मस्य पारुष्ये धर्म दंडवाचिके स्त्रियं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्री पुं धर्मो विभागस्य द्योतमाह्वय एव च पदान्यष्टादशैतानि व्यवहार स्थितावह विहि। 18 मार्ग बताते हैं कि किसी से ऋण लेने देने का विवाद पहला, दूसरा धरोहर, और तीसरा दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे, चौथा मिला मिला के किसी पर अत्याचार करना, पांचवा दिए हुए पदार्थ को लौटाना ना, और छठा बताते हैं कि वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से कम कर देना, और सातवां कहते हैं प्रतिज्ञा से विरुद्ध बरतना, आठवां क्रय विक्रयानुसय अर्थात लेन देन का झगड़ा, नौवां स्वामी और पशु पालने वाले का झगड़ा, दसवां सीमा का विवाद, ग्यारहवां और बारहवां किसी कठोर दंड देना, कठोर वाणी बोलना, तेरहवां चोरी डाका डालना, और चौदहवां किसी काम को बलात्कार से करना। पंद्रहवां मुकदमा बताते हैं कि किसी स्त्री या पुरुष का व्यभिचार होना। सोलहवां बताते हैं कि स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। सत्रहवां विभाग अर्थात दाय दान से बाद उठाना, और आठवां द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ और किसी चेतन को दांव में रख के जुआ खेलना, ये 18 प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार स्थान वाले हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं, एतेषु स्थानेषु भूयष्ठं विवादं चरतं नृणां धर्मं शाश्वतम आश्रित्य कुर्यात् कार्य विनिर्णयम्। इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म का आश्रय करके क्रिया करे, अर्थात किसी का पक्षपात कभी न करे। राजा के दावों में मुकदमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान की नियुक्ति करे। यदा स्वयं न कुर्यात् नपति कार्य दर्शनम तदा युञ्ज्याद् विद्वांसं ब्राह्मणं कार्य दर्शने। यदि राजा स्वयं इस कार्य को न कर सके तब किसी वेत्ता विद्वान को मुकदमों के निरीक्षण एवं निर्णय के लिए नियुक्त कर दे। 10वें श्लोक में कहते हैं, सूस्य कर्माणि संपश्येत् सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः सभामेव विपशि प्रविश्याग्र आशीनः स्थितेव च। वह 3 अन्य सभा के सदस्यों के साथ न्यायालय में जाकर बैठकर राजा के सभी कामों को भली प्रकार देखे। यस्मिन् देशे निषीदन्ति विप्रावेदस् विदिस्त्रयः राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान् ब्रह्मणस्ताम् सभाविधो। जिस स्थान में वेदों के ज्ञाता 3 विद्वान बैठते हैं और एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेद विद्वान बैठता है, उस सभा को ब्रह्म सभा अर्थात न्याय सभा कहते हैं। धर्मो विद्वत्व धर्मेण सभाम यत्रोपतिष्ठते शल्यम चास्य च कृतन्ति विद्वास्तत्र सभासदः। जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात तीर व धर्म के कलंक को निकालता है और अधर्म का छेदन नहीं करते, अर्थात धर्मी का मान अधर्मी के दंड नहीं मिलता, उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं। 13वें श्लोक में कहते हैं, सभां वा न प्रवेष्टेव्यं वक्तव्यं वा शमन्वजसं अब्रुवन् बिब्रुवन् वापि नरो भवति किल विशो। मनुष्य के योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात सुन के मौन रहे सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अति पापी है। यत्र धर्मो ह्य धर्मेण सत्यम यत्रानृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्त्रत्र सभासदः। जिस सभा में अधर्म से धर्म सत्य से असत्य से सत्य सब सभासदों में देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान जानो, उनमें कोई नहीं जीता। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वृषो ही भगवान धर्मस् तस्य हकुरुते हलम ब्रसलम च विद्रुवे देवास्तस्मा धर्मम न लोपयेत। यदि सुख की वृद्धि करने वाला सब ऐश्वर्यदाता धर्म है, उसका जो लोप करता है उनको विद्वान लोग ब्रसल अर्थात नीच समझते हैं। एक एव स्वधर्मभ्यो धर्मो निधनेप्युनियाह शरीरेण समम नासम सम सर्वमन्यति गच्छति। इस संसार में एक ही धर्म सुहृद है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है, और सब पदार्थ तथा संगी शरीर के नाश होने के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात संग छूट जाता है, परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता। पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षाणि मृक्षति पादः सभासदा सर्वान् पादो राजान् मृक्षति। राजसभा में पक्षपात से किए गए अन्याय का अधर्म चौथाई अधर्म कर्ता को और चौथाई साक्षी को प्राप्त होता है। चौथाई अंश से न्याय सभा के सब सदस्यों को और चौथाई राजा को प्राप्त होता है। 19वें श्लोक में कहते हैं, राजा भवेत भवत्तेना नास्तु मुञ्चन्ते च सभासदः एनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्दते। जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग को मान्य नहीं होता, वहां राजा और सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं। पाप के कर्ता को ही पाप प्राप्त होता है। जहां पर निंदा को निंदा प्राप्त हो, स्मृति के योग्य जो स्तुति के योग्य हो उसकी स्तुति हो, दंड के योग्य हो उसको दंड मिले, वह राजा पाप से मुक्त हो जाते हैं। जात्रिमात्रोपजीवी वा कर्मं स्याद् ब्राह्मण ब्रुवः धर्म प्रवोक्ता नपतेर्ण तु शूद्रो सुशूद्रः कथंचनः। केवल जाति के आधार पर जीविका करने वाला कर्मों से ब्राह्मण नहीं है। अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति चाहे राजा का धर्म वक्ता न्यायकर्ता हो सकता है, किंतु शूद्र कभी भी अपनी अवस्था में भी न्यायकर्ता नहीं हो सकता। यस्तु शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनम तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पंके गौरी उपस्थितः। जिस राजा के यहाँ शूद्र व्यक्ति धर्म न्याय का विचार करता है, वह राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में फंसी गौ के समान दुखी होता है। यद्राष्ट्रम शूद्रम भूविष्ठम नास्तिकाक्रांतम अद्विद्विजम विनश्यस्यास्तु तत्कृष्णम दुर्भिक्षा व्याधि पीड़ितम। जो राज्य शूद्र की अधिकता वाला नास्तिकों से परिपूर्ण, वह पूरा राष्ट्र शीघ्र ही अकाल और रोगों से पीड़ित होकर नष्ट हो जाता है। धर्मासन अधिष्ठाय संधितांग समाहिता प्रणम्य लोकपालेभ्य कार्य दर्शन इमारभित। राजा धर्मासन अर्थात न्यायाधीश के आसन पर बैठकर शरीरांगों को ढककर सावधान होकर लोकपालों को प्रणाम करके मुकदमों को देखना प्रारंभ करे। अनर्थानर्था बुभौ बध्या धर्माधर्मौ च केवलौ वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत् कार्याणि कारिणाम। मुकदमे की वास्तविक स्थिति तथा अनर्थ स्थिति और धर्म आधार केवल इन दोनों पक्षों को अच्छी प्रकार जानकर अर्थात पक्षपात रहित होकर वर्णों तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्रम से मुकदमे वालों सब मुकदमों को निर्णय करे। बाह्यैर्विभालैर्लिंगैर् भावमन्तर्गतं नृणां सर्ववर्णेऽङ्गिताकारैः चक्षुषा चेष्टितेन च। न्यायकर्ता को बाहर के चिन्हों से, चाल शरीर की मुद्राएं आदि लक्षणों से, स्वर बोलते समय रुकना, घबराना, गदगद होना आदि वर्ण, चेहरे से का फीका पड़ना, लज्जित होना आदि से इंगित, मुकदमों में अभियुक्तों के परस्पर संकेत सामने न देख सकना, इधर उधर देखना आदि से आकार, मुख, नेत्र आदि का आचार आकार बनाना, कांपना, पसीना आदि आंखों से उत्पन्न होने वाले भावों से, और हाथ मसलना, उंगलियां चटकाना, अंगूठे से जमीन कुरेदना, सिर खुजलाना आदि मुकदमे में शामिल लोगों के मन के असली भावों को भाप लेना, जान लेना चाहिए। अकारैरिंगितार्गत्या चेष्टया भासितेन च नेत्रवक्तविकारैश्च गृहीतेऽन्तर्गतं मनः। अकारों संकेतों से, चाल से, हरकत से और बोलने से, नेत्र एवं मुख के हाव भावों से मनुष्यों के मन का भीतर भाव मालूम हो जाता है। बालदायिक दायादिकं रिक्तं तावद् राजा अनुपालयेत् यावत् स्यात् समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः। राजा बालक अर्थात नाबालिक तथा अनाथ बालक की पैतृक संपत्ति और अन्य धन दौलत की तब तक रक्षा करे जब तक वह बालक समावर्तन संस्कार होकर अर्थात गुरुकुल में स्नातक बनकर आए, जब तक वह बालिक न हो जाए। वंध्या पुत्रासुत चैवं स्याद् द्रक्षणं निष्कुलासु च पवित्राश्च ते स्त्रीषु विविधास्वातुरासु च। बांझ और पुत्रहीन, कुलहीन, तथा जिनके कुल में कोई पुरुष न रहा हो, पतिव्रता स्त्री अर्थात पति के परदेश गमन आदि कारण से जो स्त्री अकेली हो, विधवा और रोगिणी स्त्रियों की संपत्ति की रक्षा भी इस प्रकार उनके समर्थ हो जाने तक करनी चाहिए। इनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। जीवंतीनां तुमाताशां ये तद्धेरेहु सबांधवा तक्षव्या चौरदंडेन धार्मिकः पृथ्वीपतिः। उन जीती हुई स्त्रियों के धन को जो रिश्तेदार भाई बंधु हर ले कब्जा कर ले तो धार्मिक राजा उन व्यक्तियों को चोर के समान दंड से शिक्षा दे। प्रवष्ट स्वामिकं रिक्तं राजा त्रब्दं निपात निधापयेत् अरवाक् त्रयाधरे स्वामी परेण नृपतिर हरेत। मालिक से रहित धन अर्थात लावारिस धन को 3 वर्ष तक सुरक्षित रखे। 3 वर्ष से पहले यदि स्वामी आ जाए तो उसको ले ले और उसके बाद राजा उसको अपने कोष में जमा कर ले। ममेदमितियो भूवात् सो नुयोज्यो यथाविधि संवाद रूप संख्यादीन स्वामी तद द्रव्यमर्हति। जो कोई उस लावारिस धन को यह मेरा है ऐसा कहे, उसे उचित विधि से पूछताछ करे अर्थात धन की संख्या रंग समय पहचान आदि पूछे, धन का स्वरूप मात्रा आदि बातों को सही सही बताकर स्वामी उस धन को लेने का अधिकारी होता है अर्थात सही सही पहचान बताने पर राजा उस धन को लौटा दे। अवेदयानो नष्टस्य देशम कालम च तत्त्वतः वर्णम रूपम प्रमाणम च तत्समम दंडमर्हति। जो व्यक्ति नष्ट हुए या खोए हुए धन का स्थान समय रंग स्वरूप की मात्रा को सही सही बताकर सिद्ध नहीं कर पाता, जो झूठ ही उस धन को हड़पने का प्रयास करता है, वह उस धन के बराबर दंड भुगतने का हकदार है अर्थात राजा उसे दंड दे। अददीताथ खड़बागम प्रणष्टाधिगता नृप दशमं द्वादशं वापि सतां धर्मं अनुस्मरन्। किसी का खोया हुआ धन प्राप्त होने पर उसमें से राजा सज्जनों के धर्म का अनुसरण करता हुआ न्यायपूर्वक 10वां और 12वां भाग कर रूप में ग्रहण करे। प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्ते रधिष्ठितं यांस्तत्र चौरान् गृहीत्यान् राजेभिः घातयेत्। चुरा लेने के बाद प्राप्त किए गए धन को राजा योग्य रक्षकों के सुरक्षा में रखे हुए अगर उस पहरे में भी चोरी करते हुए जो चोर पकड़े जाएं, चाहे वे पेशेवर चोर हों अथवा रक्षक हों, उन्हें राजा हाथी से कुचलवा कर मरवा दे। ममायमिति यो ब्रुवान् निधिं सत्तेन मानवः तस्यादधीत खड्बागं राज्यं द्वादशमेव वा। चोरी से धन प्राप्त धन को जो मनुष्य रूप रंग तोल संख्या आदि की ठीक ठीक पहचान यह वास्तव में मेरा है ऐसा सच बतला दे तो उस धन में से 6वां, 8वां, 12वां भाग कर के रूप में ले लेना चाहिए, से धन उसके स्वामी को लौटा देना चाहिए। अन्नतम तो बंदंड दंड स्वित्तस्याम तस्यैव वा निधानस्य संख्याल्यापि पीयसी कलाम। अगर कोई झूठ बोले, किसी धन पर झूठा दावा करे, झूठ ही अपना बतलावे, ऐसे अपराधी को अपना कहे जाने वाले धन का 8वां भाग जुर्माना करे। विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधम् अशेषो अशेषतोऽप्यदादि ददीत सर्वस्याधिपति हिंसा। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं पहले के रखे हुए धन को देखकर उस संपूर्ण धन को ही ले ले अर्थात राजा या अन्य व्यक्ति को उसका हिस्सा न दे, क्योंकि ब्राह्मण सारे संसार का स्वामी है, सर्वस्याधिपतिर्हिसा। यम तो पश्येन निधिम राजा पुराणम निधि निमचितौ तस्माद्जेभ्यो दत्त्वार्धम अर्धम कोशे प्रवेशयेत। राजा पृथ्वी में गड़े हुए किसी पुराने धन को देख ले अथवा प्राप्त कर ले, उसमें से आधा ब्राह्मणों को दान देकर आधा अपने खजाने में जमा करे। निधि नाम तो पुराणानाम धातूनामेव चक्षितौ अर्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिमशः। पुराने धन या खजानों और पृथ्वी के प्राप्त होने वाली धातुओं खानों का रक्षक होने के कारण राजा आधे भाग का अधिकारी है, राजा पृथ्वी का स्वामी है। दातव्यम सर्वर्णेभ्यो राज्ञा चौरहृतम धनम राजा तदुपयुंजानश्चौरस्याप्नोति किलिविषम। चोरों के द्वारा चुराया गया धन राजा को सब वर्णों वालों को अर्थात जिस वर्ण के व्यक्ति का वह धन है उसी को देना चाहिए। उस राजा को उस धन को अपने उपयोग में लाने पर चोर के अपराध का भागी होता है। जाति जान पदान धर्मान श्रेणी धर्मांश धर्मवित समीक्ष कुल धर्माश स्वधर्मम प्रतिपादयेत। धर्मज्ञ जो धर्मज्ञ राजा हो वह वर्णों और धर्मों के देश धर्मों को तथा वणिक वृत्ति कृषि विद्धि से आदि के श्रेणी धर्मों को कुलों में प्रचलित परंपराओं को देखकर अपनी व्यवस्थाओं को लागू करे। स्वानि कर्माणि कुर्वाणां दूरे शांतो विमानवा प्रियान भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्म प्रवास्थिताः। अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए और अपने अपने कर्तव्य कर्मों में स्थित रहने वाले मनुष्य दूर दूर रहते हुए भी समाज के प्यारे अर्थात लोकप्रिय होते हैं। नूत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजानाप्यस्य पुरुषः न च प्रापितमन्येत ग्रसेदर्थं कथञ्चन। राजा अथवा कोई भी राजपुरुष स्वयं किसी विवाद को न उत्पन्न करे और न बढ़ाए या प्राप्त कराए गए धन की किसी भी स्थिति में हड़पने की इच्छा न करे। यह भी जब तक वह सिद्ध न हो जाए कि यह लावारिस है तब तक राजा उसे अपने अधिकार में न ले और कोई राजपुरुष उसे बीच में हड़पने न पाए। 44वें श्लोक में कहते हैं यथा नत्यत्य स्रक्पातैर मृगस्य मृगयोः पदम नाये तथा अनुमानेन धर्मस्य नपतेः पदम। जैसे शिकारी खून के धब्बों से हिरण के स्थान को पता कर लेता है वैसे ही राजा अनुमान प्रमाण से धर्म के तत्व अर्थात वास्तविक न्याय का निश्चय करे। सत्यमर्थम च संपर्शेद आत्मानमथ साक्षिणः देशम रूपम च कालम च व्यवहार विधो स्थितः। मुकदमों का फैसला करने के लिए तैयार हुआ राजा मुकदमे की सत्यता न्याय उद्देश्य अपनी आत्मा के आंतरिक निर्णय को और साक्षियों का तथा देश स्वरूप एवं समय को अच्छी तरह विचार करे। सद्भिराचरितम यस्याद् धार्मिकैश्च जातिभिः तद्देश कुशलजातीनां विरुद्धं प्रकल्पयेत्। श्रेष्ठ लोगों धार्मिक विद्वानों ने जो आचरण किया है देश कुल तथा जात के विरुद्ध जो न हो उस व्यवहार के अनुसार राजा निर्णय दे। 47वें श्लोक में कहते हैं अधर्मार्थ सिद्ध्यर्थम उत्तमे उत्तमर्णे न चोदितः दापये धनिकस्यार्थम अधर्माणाद्वे भावितम्। अधर्मण अर्थात कर्जदार से अपना धन वसूल करने के लिए कर्ज देने वाले अर्थात धनी की ओर से प्रार्थना करने का पर राजा धनी का वह लेख आदि सिद्ध निश्चय किया हुआ धन कर्जदार से दिलवावे। यैर्यै रूपायैर्यर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तममार्णिकः तैस्तै रूपायै संग्रह्य दापये धर्मिक अधर्मिकं। कर्जदाता जिन जिन उपायों से अपने धन को प्राप्त कर सके राजा उन उन उपायों से कर्जदार को वश में करके धन दिलवावे। धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च प्रयुक्तं शादेदर्थं पंचमेन बलेन च। धर्म से व्यवहार से छल से आचरण से और शक्ति से दिए हुए धन को प्राप्त कराए। ये सब 48वें से प्रक्षिप्त श्लोक माने जाते हैं। न यः स्वयं साधयेदर्थम् उत्तमर्णोर्धर्मिका धर्मिकात् यश न स राजाभिज्ञो वक्तव्यः स्वकं साधयेयन्धनम्। जो कर्जदाता कर्जदार से स्वयं ही धन वसूल करता हो, अपने धन को वसूल करते हुए वह धनी राजा को रोकना नहीं चाहिए, अर्थात उसे वसूल करने दे।